एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो पुणे के स्टूडियो से
आपका हार्दिक स्वागत है।
यह हमारी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सेवा है।
हमारे आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए एक प्रेरणादायक संदेश और प्रशंसा के गीत ले आए हैं।
आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत करने के लिए आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे।
आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो सुन रहे हैं आशा की वाणी।
अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं 1-800-833-2231 पर संपर्क करें या bible@awr.org पर ईमेल करें।
इस डाक पते पर हमें लिखने के लिए आपका स्वागत है। एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर, पोस्ट बॉक्स 1446, मार्केट यार्ड पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल कर सकते हैं hindirsamc@sudadventist.org। एक बार फिर ईमेल आईडी hindirsamc@sudadventist.org पर।
आप इस नंबर पर आपकी बाइबल अध्ययन में रुचि और प्रार्थना अनुरोध के साथ हमसे संपर्क कर सकते हैं। 9195-7285-9272।
आप हमारे सभी कार्यक्रमों को सुनने के लिए हमारी वेबसाइट awr.org पर भी लॉगिन कर सकते हैं। मैं दोहराता हूँ awr.org या awr360 मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।
एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो AWR पुणे स्टूडियो से।
हमारे साथ हैं श्रीमान रॉबिन्सन आर कुजूर परमेश्वर का वचन प्रस्तुत करने के लिए।
परमेश्वर का वचन सुनने से पहले आपके लिए एक मधुर गीत।
आने वाला है मसीह अपने लोगों के लिए, आने वाला है मसीह अपने लोगों के लिए, देने वो जीवन अनंत स्वर्ग में। आने वाला है मसीह अपने लोगों के लिए, देने वो जीवन अनंत स्वर्ग में। संसार से मन फिराओ, यीशु को हृदय में बसा लो, संसार से मन फिराओ, यीशु को हृदय में बसा लो। आने वाला है मसीह अपने लोगों के लिए, आने वाला है मसीह अपने लोगों के लिए, देने वो जीवन अनंत स्वर्ग में। संसार से मन फिरा ले, यीशु को हृदय में बसा ले, संसार से मन फिरा ले, मसीह अपने लोगों के लिए देने वो जीवन अनंत स्वर्ग में। आएगा होके बादलों पे सवार, आएगा होके बादलों पे सवार, ले जाने हमको यीशु अपने संसार, ले जाने हमको यीशु अपने संसार, देखेगी दुनिया प्रभु यीशु की।
अब समय है परमेश्वर का वचन सुनने का।
नमस्कार प्रिय श्रोताओं, मैं भाई रॉबिन्सन कुजूर परमेश्वर का सेवक परमेश्वर का वचन लेकर आपके पास आता हूँ। आइए हम परमेश्वर का वचन सुनने से पहले उससे प्रार्थना करें। हे हमारे महान दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरे पास आते हैं, हम तेरे वचनों को सुनने जा रहे हैं। पिता परमेश्वर, हमारे मनों को और हमारे हृदयों को खोल दे और हमें तेरे राह में चला। मैं मेरे श्रोताओं के लिए विशेष प्रार्थना करता हूँ पिता, तो उनके संग हो, तूने तेरा पवित्र आत्मा के द्वारा आशीष दे कि वे तेरे वचनों को समझ सके और तेरे राह में चलने सके, उन्हें आत्मिक उन्नति करने के लिए और तेरे राज के लिए तैयार होने के लिए मदद कर पिता। मेरे संग हो, तेरा पवित्र आत्मा दे और मुझे तेरा सामर्थ दे ताकि मैं तेरे वचनों को तेरे सामर्थ द्वारा बतला सकूँ। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुन ग्रहण करें, आमीन। प्यारो, आज का मेरा संवाद का शीर्षक है जब लोग तुम्हारी निंदा करेंगे। हम पढ़ते हैं मत्ती 5:12 में, यह यीशु का वचन है, आनंदित और मगन होना क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। हम प्रभु यीशु मसीह के प्रवचन के विषय में सीख रहे हैं। हम यीशु मसीह के पहाड़ी उपदेश के बारे में इन दिनों सीख रहे हैं। प्यारों, आज हम मत्ती 5:12 का अध्ययन करेंगे। मत्ती 5:12 में मसीह सीधे अपने शिष्यों को सलाह देते हैं कि जब वे उनके कारण सताए जाएं तो खुश रहें। मसीह यह सुझाव नहीं दे रहे थे कि वे अपने लिए दुख सहने में आनंद लें, बल्कि वे दुख सहते हुए स्वर्ग में अपने प्रतिफल की आशा करें। प्यारो, हमें मसीह के लिए कष्ट सहने के लिए कहा जाता है। कई बार जब हम उसके राह में चलते हैं हमें कष्ट आती है। हमें घबराना नहीं चाहिए, जब हम मसीह में हैं परमेश्वर हमारे साथ है और प्रभु यीशु मसीह हमें इस जीवन का राह में अगुवाई करेगा। अपनी विषय वस्तु से यीशु के ये शब्द पिछले आशीर्वाद में दिए गए कथन का एक सरल प्रगटीकरण प्रतीत होते हैं। हालांकि क्रिया रूपों से ऐसा प्रतीत होता है कि वह सीधे अपने शिष्यों से बात कर रहा था कि वह अब एकत्रित सभी मंडली से सामान्य तरीके से बात करने से संतुष्ट नहीं था। इस अनुमान का समर्थन पूर्ववर्ती आशीर्वादों में प्रयुक्त क्रियाओं के अव्यक्तिक तृतीय व्यक्ति रूप से अधिक प्रत्यक्ष द्वितीय व्यक्ति रूप में परिवर्तन है। यहाँ यीशु अब उन लोगों के लिए आशीर्वाद का एक सरल कथन नहीं कर रहा है जो पूर्ववर्ती आशीर्वादों में बताई गई योग्यताओं को पूरा करते हैं। इसके बजाय वह अपने शिष्यों को एक व्यक्तिगत प्रत्यक्ष तरीके से संबोधित कर रहा है। उन्हें अपने नाम के लिए शर्मिंदगी सहने के योग्य, खुशी से गिने जाने के लिए आमंत्रित कर रहा है और स्वर्ग में उनके लिए प्रतीक्षा कर रहे प्रतिफल की प्रत्याशा में आनंदित होने के लिए आमंत्रित कर रहा है। यह इस सेटिंग में है कि हम अपनी सोच को अच्छे और बुरे की ताकतों के बीच सदियों पुराने संघर्ष और अंतिम क्लेश की ओर निर्देशित करेंगे, जो जल्द ही सत्य के गवाहों का हिस्सा होगा। मत्ती 5:11 में यीशु मसीह ने कहा, धन्य है आप जब लोग तुझे मेरे कारण झूठ मूठ का बदनाम करते हैं, आपके विषय में, आपके बारे में बोलते हैं। सताए गए विश्वासियों को किस तरह का रवैया अपनाना चाहिए? जिन लोगों को यीशु ने धन्य घोषित किया है, उनकी खुशी का असली कारण उनमें नहीं है, बल्कि यह उनके लिए प्रभु के वादे में है। प्रत्येक आशीर्वाद में यीशु ने घोषणा के दूसरे भाग में खुशी का कारण बताया। आत्मा में गरीब, वे जो शोक करते हैं, जो भूखे और प्यासे हैं, सताए गए सभी धन्य हैं, क्योंकि यीशु उन्हें स्वर्ग का राज्य, संतावना, संतुष्टि, ईश्वर का पुत्र की उपाधि, ईश्वर का दर्शन देने का वादा करने में सक्षम है। स्पष्ट रूप से उत्पीड़न स्वयं उन लोगों के लिए खुशी का कारण नहीं हो सकता है जो पीड़ित हैं। प्रेरितों ने भट्टी परीक्षण क्लेश में गौरव नहीं किया। एक पुण्य अनुभव के रूप में उत्पीड़न का कोई मूल्य नहीं था। सताए गए ईसाइयों की खुशी का स्रोत मसीह है। वे खुश हैं जिन्हें मेरे कारण या मेरे नाम के कारण, जैसा लुका 21:12 में भी लिखा गया है, अपमानित, सताया या झूठा आरोप लगाया जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि महिमा और परमेश्वर की आत्मा तुम पर रहती है, और क्योंकि तुम एक मसीह के रूप में पीड़ित हो, 1 पत्रस 2:14-16 में। यीशु मसीह कहता अपने शिष्यों को कि जब लोग तुझे मेरे नाम से सताए तो तुम उदास ना होना, घबराना नहीं, परंतु आनंदित होना, तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। यीशु के अनुसार आनंदित होने के 2 कारण हैं, जो कि हम मत्ती 5:12 में पाते हैं। स्वर्ग में तुम्हारा प्रतिफल महान है। केवल स्वर्ग के राज में ही छुड़ाए गए लोगों को वह प्रतिफल मिलेगा जो प्रभु ने उनके लिए तैयार किया है। यह पहला कारण है। यहां संकेतित दूसरा कारण भविष्यवक्ताओं के साथ की गई तुलना में पाया जाता है। जो लोग सताए जाते हैं, जैसे कि भविष्यवक्ताओं को सताया गया था, वे भविष्यवक्ताओं के लिए आरक्षित सम्मान प्रतिफल प्राप्त करने की उम्मीद कर सकते हैं। दुख का कारण बनने के बजाय उत्पीड़न मसीह के शिष्यों को खुशी प्रदान करना चाहिए, क्योंकि यह इस बात का प्रमाण है कि वे अपने स्वामी के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। उसके शिष्यों को आनंदित होना चाहिए, क्योंकि उनके लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। और दूसरा, उनको भविष्यवक्ताओं के समान सम्मान मिलेगा और प्रतिफल मिलेगा। हम मत्ती 21:35-38 में पढ़ते हैं दाख की बारी का दृष्टांत। दाख की बारी का दृष्टांत लोगों के प्रति परमेश्वर के असीम धैर्य और भलाई को साबित करता है। साथ ही यह मनुष्य की कृतघ्नता और क्रूरता को भी दर्शाता है। सच है, यह दृष्टांत विशेष रूप से इसराइलियों के लिए निर्देशित था, लेकिन यह परमेश्वर के दूतों के प्रति मानव जाति के सामान्य दृष्टिकोण को भी दर्शाता है। अपने प्रवचन में इस सत्य के शाब्दिक अनुप्रयोग के परिणाम स्वरूप स्टीफन को अपनी शहादत का सामना करना पड़ा। उसने कहा, भविष्यवक्ताओं में से किसको तुम्हारे पूर्वजों ने सताया नहीं, और उन्होंने उन लोगों को मार डाला जिन्होंने धर्मी के आने की पहले से घोषणा की थी, जिसे तुमने अब धोखा दिया और मार डाला। यह हम प्रेरितों के काम की किताब 7:52 में पाते हैं। यह स्टीफनुस उन लोगों को कह रहा था जो उन्हें सता रहे थे। उस घटनापूर्ण दिन जब यीशु ने शास्त्रियों और फरीसियों पर धिक्कार किया, जो हम मत्ती 23 में पढ़ते हैं, मसीह के होठों से निकले सत्य के रत्न कई लोगों के दिलों में संजोए गए। उनके लिए जीवन में नए विचार शुरू हुए, नई आकांक्षाएं जागृत हुई और एक नया इतिहास शुरू हुआ। मसीह के क्रूस पर चढ़ने और पुनरुत्थान के बाद ये लोग आगे आए और अपने दिव्य आदेश को कार्य की महानता के अनुरूप बुद्धि और उत्साह के साथ पूरा किया। यरूशलेम के मंदिर में उस आश्चर्यचकित विस्मयकारी भीड़ के लिए उद्धारकर्ता के शब्दों से बहने वाले परिणाम शक्तिशाली थे। स्तिफनुस की शहादत में हम पाते हैं उसकी यीशु के साथ रिश्ते के बारे में। प्रेरितों के काम 7:55-56 में हम यह पढ़कर देख सकते हैं। प्यारो, मसीह के लिए अपना जीवन देने के लिए तैयार होना यह दर्शाता है कि हम स्वयं के लिए मर चुके हैं और मसीह में जीवित हैं। यह प्रकट करता है कि हम मसीह के प्रति पूरी तरह से समर्पित हैं और वह हमारे लिए बहुत कीमती है, जीवन से भी अधिक कीमती। यह एक स्पष्ट संकेत है कि हमारा जीवन मसीह में छिपा हुआ है और हमें उसमें अनंत जीवन का आश्वासन है। सुसमाचार के लिए इससे अधिक प्रभावशाली गवाही कोई नहीं हो सकती कि पुरुष और महिलाएं इसके लिए अपना जीवन देने के लिए तैयार हैं। धार्मिकता के कारण सताए गए लोगों ने एकमत होकर अपने उत्पीड़कों के लिए परिस्थितियों को कम करने का अनुरोध किया है। यीशु ने क्रूस पर प्रार्थना करते हुए उदाहरण प्रस्तुत किया, हे पिता उन्हें क्षमा कर क्योंकि वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। लूका 23:34 में हम पाते हैं अपने श्रोताओं पर जीवन के राजकुमार को मारने का खुलेआम आरोप लगाने के बाद पत्रस ने अपनी ओर से कहा, अब हे भाइयों, मैं जानता हूं कि तुमने यह काम अज्ञानता से किया है और तुम्हारे सरदारों ने भी किया है। प्रेरितों के काम 3:15-17 में पाते हैं। अनुभव से बोलते हुए प्रेरित पौलुस ने समझाया कि यदि इस संसार के हाकिमों को परमेश्वर की बुद्धि पता होती तो वे महिमा के प्रभु को क्रूस पर नहीं चढ़ाते। 1 कुरिन्थियों 2:6-8। जिस तरह ईश्वर के मानव हृदय पर अकल्पनीय कार्य को दर्शाने के लिए ईश्वरीयता का रहस्य है, उसी तरह अधम का रहस्य भी है जो उस कार्य को इंगित करता है जो उससे कम रहस्यमय नहीं है, जिसे बाइबल शैतान कहती है। वह मसीह विरोधी है, ईश्वर की संतानों का महान विरोधी है। जब वह उन्हें हिंसा से नहीं हरा पाता तो शैतान उन्हें सभी प्रकार के सूक्ष्म धोखे और चमत्कारों के माध्यम से बहकाने की कोशिश करता है। प्यारो, ईश्वर कभी भी इच्छा या विवेक को मजबूर नहीं करता, लेकिन शैतान का निरंतर सहारा उन लोगों पर नियंत्रण पाने के लिए जिन्हें वह अन्यथा बहका नहीं सकता क्रूरता द्वारा मजबूर करना है। भय या बल के माध्यम से वह विवेक पर शासन करने और खुद के लिए सम्मान प्राप्त करने का प्रयास करता है। दानियल 7 में हम भविष्यवाणी पाते हैं, अनंत राज्य यीशु के दासों को मिलेगा, यीशु के धर्मी लोगों को मिलेगा, उसके संतों को मिलेगा। यदि जैसा कि भविष्यवक्ता आमोस ने पुष्टि की, प्रभु परमेश्वर कुछ भी नहीं करेगा परंतु वह अपने दास भविष्यवक्ताओं पर अपना रहस्य प्रकट करेगा, आमोस 3:7, तो परमेश्वर निश्चित रूप से उस संकट को प्रकट करेगा जो पूरे इतिहास में उसके लोगों का इंतजार कर रहा है। वह ऐसा उन्हें डराने के लिए नहीं बल्कि उन्हें वफादार होने के लिए प्रोत्साहित करने और तैयार रहने की चेतावनी देने के लिए करेगा। गणितीय सटीकता के साथ परमेश्वर ने दानियल को पोप द्वारा 1260 वर्षों तक किए गए उत्पीड़न का खुलासा किया। बाइबल में इस भविष्यवाणी अवधि का 7 उल्लेख किया गया है। दानियल 7:25 में, 12:7 में, प्रकाशितवाक्य 11:2-3 में, 12:6 में, 14 में और प्रकाशितवाक्य 13:5 में, और हर बार उस युद्ध के संबंध में जो अंधकार की शक्तियां परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध छेड़ेंगी। अपनी भविष्यवाणी प्रवचन में यीशु ने मसीह कलीसिया के इतिहास में इस नाटकीय समय का भी संकेत किया, जिसे हम यीशु मसीह के प्रवचन में पाते हैं जो मिलता है मत्ती 24 में, विशेषकर 8-10 पद में। दानियल 7 के भविष्यवाणी जो विशेषकर 22:28-18 पद में हम देखते हैं, इस भविष्यवाणी का परिणाम हम पाते हैं कि सारी सांसारिक राजा और सरकारें समाप्त हो जाएंगी, लेकिन परम प्रधान का राज्य हमेशा के लिए कायम रहेगा। दुष्टों का अतिक्रमण और कुशासन कुछ समय तक चल सकता है, लेकिन जल्दी इसका अंत हो जाएगा। फिर यह धरती अपने असली मालिक को वापस की कर दी जाएगी, जो इसे संतों के साथ साझा करेगा। जो लोग लंबे समय से लोगों द्वारा निराश्रित और तिरस्कृत हैं, उन्हें जल्द ही परमेश्वर द्वारा सम्मानित और ऊंचा किया जाएगा। कलिसिया का उत्पीड़न 1260 वर्षों की पूरी अवधि के दौरान जारी नहीं रहा। अपने लोगों के प्रति दया दिखाते हुए परमेश्वर ने उनके ज्वलंत परीक्षण के समय को कम कर दिया। कलिसिया पर आने वाले महाकलेश की भविष्यवाणी करते हुए उद्धारकर्ता मसीह ने कहा, यदि वे दिन घटाए ना जाते तो कोई प्राणी ना बचता, परंतु चुने हुओं के कारण वे दिन घटाए जाएंगे। पढ़ते हैं मत्ती 24:22 में। दानियल 12 अध्याय का 1 में हम संकट के समय के बारे में पढ़ते हैं, जो कि दुनिया के अंत में आएगा, जो दुनिया के इतिहास में पहले कभी नहीं आया था। उस समय के लिए प्रभु यीशु मसीह दानियल भविष्यवक्ता के द्वारा हमें तैयार रहने के लिए प्रोत्साहन देता है। दानियल 12 अध्याय का 1 में जो संकट का जिक्र है, उसका अध्ययन करते समय संकट के भयानक समय के बीच आप बड़ी आशा देख सकते हैं। मुसीबत के महान समय पर ध्यान केंद्रित करना और खुद को बहुत परेशान पाना आसान है। हालांकि हमें दानियल 12:1 के संदर्भ से मुसीबत के समय को देखना चाहिए। ध्यान दीजिए कि मुसीबत के समय का चित्रण बहुत प्रोत्साहन के साथ शुरू और समाप्त होता है। इसकी शुरुआत माइकल, जो परमेश्वर का दूत है, अपने लोगों को बचाने आता है। माइकल द्वारा परमेश्वर के लोगों के लिए खड़े होने से होती है। वो अपने लोगों के लिए खड़ा होता है और इसका समापन परमेश्वर के लोगों के उद्धार के साथ होता है। अंतिम दिनों में परमेश्वर के लोगों को दुनिया के भविष्य और आने वाले संकट के बारे में धोखा नहीं खाना चाहिए। प्रभु उनके लिए खड़े हैं और उन्हें मुक्ति का आश्वासन दे रहे हैं। वे ऐसे संकट से गुजरेंगे और विजयी होकर निकलेंगे। परमेश्वर ने हमें इस विषय के बारे में अंधकार में नहीं छोड़ा है। न केवल उसने हमें बाइबल की भविष्यवाणियां दी है, जो विशेष रूप से अंतिम समय में ईसाइयों के लिए अभिप्रेत है, बल्कि फिर से भविष्यवाणी के आत्मा के माध्यम से उसने शेष कलिसिया को अंतिम घटनाओं का एक स्पष्ट दर्शन दिया है। प्रभु ने अपनी कलिसिया को आने वाले बड़े परीक्षण में उनको बचाने का वादा किया है। उन्हें उसके वचन पर धीरज धरने और भरोसा करने के लिए कहा जाता है। यह हम प्रतिज्ञा प्रकाशित वाक्य 3:10 में पाते हैं। अब परीक्षा का समय आएगा तो वे लोग प्रकट होंगे जिन्होंने परमेश्वर के वचन को अपने जीवन का नियम बना लिया है। गर्मियों में सदाबहार और अन्य वृक्षों के बीच कोई उल्लेखनीय अंतर नहीं होता, लेकिन जब सर्दियों के झोंके आते हैं तो सदाबहार अपरिवर्तित रहते हैं, जबकि अन्य वृक्षों से उनके पत्ते झड़ जाते हैं। केवल वे लोग ही अंतिम महान संघर्ष में टिक पाएंगे जिन्होंने बाइबल की सच्चाइयों से अपने मन को मजबूत किया है। यह कहती है बहन एलन व्हाइट महान विवाद पुस्तक में पृष्ठ 593 और 594 में। प्यारो, मुसीबत के समय यीशु मसीह आपकी और हमारी रक्षा करेगा, यह उसका वादा है। आप उस पर भरोसा करिए। जब परमेश्वर के दुश्मन मसीहों को सताते हैं तो उनका मकसद आम तौर पर उस व्यक्ति के प्रभाव को खत्म करना और परमेश्वर के धर्म के काम को कम करना होता है, लेकिन आप देखेंगे कि उसके बजाय परमेश्वर का काम बढ़ते जाता है और उसके लोग गवाही देकर अपना खून देते हैं और इससे उसका काम और बढ़ते जाता है। यह उदाहरण हम बाइबल में पाते हैं और इतिहास में भी पाते हैं। बाइबल में हम स्तिफनुस के बारे में पढ़ें, जो अपना बलिदान दे करके गवाही दिया और धर्म का संदेश आगे बढ़ा। आगे चलकर पौलुस यीशु मसीह को अपनाया और आगे उसका काम किया, उसका प्रचार किया, दुनिया के दूर दूर तक प्रभु यीशु मसीह का सच्चाई को वह प्रचार किया। प्यारों भाइयों और बहनों, हम एक बड़े विवाद में उलझे हुए हैं। बुराई की ताकतें अच्छाई की ताकतों के खिलाफ है। जैसे जैसे हम समय के अंत के करीब पहुंचते हैं, शैतान अपनी पूरी ताकत से परमेश्वर के लोगों के खिलाफ अपनी ताकत जुटाएगा, क्योंकि वह जानता है कि उसका समय कम है। फिर भी हम अकेले इस लड़ाई में नहीं हैं, हम इस लड़ाई में अकेले उलझे नहीं हैं। परमेश्वर ने अंत तक हमारे साथ रहने का वादा किया है, यह हम मत्ती 28 का 20 पद में पाते हैं। और स्वर्ग में हमारे लिए ऐसी आशीषें तैयार की हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम इस प्रतिफल को क्यों खोए, आइए हम विश्वस्त रहे, उसके वचन पर धीरज धरे और परमेश्वर पर भरोसा करें। वह हमारे साथ रहेगा, वह हमें बचाएगा, वह हमें बचाने के लिए आ रहा है, इस संकट से बचाएगा और स्वर्ग राज ले जाएगा। आइए हम उस विश्वास में जिए। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे महान परमेश्वर पिता, हम तेरे पास आते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह और उसके ताकत के लिए धन्यवाद देते हैं, जो तू अपने लोगों को देता है। तू अपने स्वर्गदूतों के द्वारा अपने लोगों की रक्षा करता है। तेरा प्रतिज्ञा है कि तू अपने लोगों के साथ दुनिया के अंत तक रहेगा, हर एक संकट में उनके साथ देगा, उनका मदद करेगा। पिता परमेश्वर, हमें तेरे नजदीक रहने के लिए मदद कर और तू इसमें विश्वस्त रहने के लिए मदद कर। पिता पिता मेरे हर एक श्रोताओं के सामने जो तेरे वचन को सुन रहे हैं और हम सबों को तेरा में चला और तेरे राज के लिए तैयार करता हूं, तो यीशु के नाम से मांगता हूं, सुना ग्रहण करें, आमीन।
इसके साथ ही हम लगभग अपने प्रसारण के समाप्ति पर आ गए हैं। परमेश्वर के वचन को अधिक जानने के लिए आप हमेशा हमें 1800833231 पर संपर्क करें या हमें bible@awr.org पर ईमेल करें।
हमारा डाक पता है AWR Adventist World Radio, पोस्ट बॉक्स 1446, पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल भी कर सकते हैं hindiarsamc@sudaventist.org।
मैं हूँ गौरव चौहान
और मैं हूँ सारा मंडोरा।
अपने परिवार और दोस्तों के साथ फिर से हमसे जुड़े, तब तक हम आपको अल्लाह और ईश्वर के आशीर्वाद की कामना करते हैं।